السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أجلت لك توفيق سهم. سورت التکویر مکی سورت ہے، اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں کویرت کا لفظ ہے، جو کہ اصل میں فعل ہے، لیکن جب اس کا مصدر بنایا جائے تو پھر تکویر بنتا ہے. تو کویرت کا مصدر تکویر. اور یہ سورت اور اگلی سورت بہت ملتی جلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سورتیں پڑھے، اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت. تو آج ہم ان میں پہلی دو سورتیں پڑھیں گے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 7 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 81 ہے، یعنی یہ شروع کی سورتوں میں سے ہے. اور اس میں بھی قیامت کے دن کی بات ہے. آیت نمبر 14 تک قیامت کے حالات ہیں، اس کے بعد قسم کھائی گئی کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے. تو اس صورت میں اس چیز کو ری انفورس کیا گیا کہ اس کے لانے والے جبرائیل امین اور جن کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی وہ بھی امانت دار، تو اس وحی کے اوپر یقین کرو. اس سورت کا ایک ہی رکوع ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ جھنجھوڑ دینے والی سورت ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کوئی سمجھنے والی چیزیں نہیں ہیں، مگر دل پہ لینے والی ضرور ہیں. لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جب یہ سورت کو پڑھیں تو کام کاج چھوڑ کے بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ اس سورت کو دل میں اتاریں، اور خاص طور پہ شروع کی آیات، اس سورت کی بھی اور اگلی سورت کی بھی، کیونکہ علم وہی نافع ہے جو کہ دل پہ اثر کرے اور عمل میں تبدیلی لائے. باقی اگر علم وہ ہے کہ جس میں صرف رٹے لگانے، ترجمے یاد کرنے، ٹیسٹ دینے اس حد تک ہے، تو وہ کوئی ایسا نفع مند علم نہیں ہے، یا اس کا مقصد وہ نہیں ہے. تو جب تک یہ علم دل کی دنیا کو نہ بدلے، اس وقت تک کوئی گریجویٹ نہیں ہے اس سے. یہ گریجویٹ وہی ہے جو کہ واقعی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کا فائدہ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، باقی صرف باتیں ہیں. تو اگر آپ واقعی علم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری توجہ، حاضر دماغی اور اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کے اس کو وقت دینا ہوگا. देखते हैं सूरतुल तकवीर मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद शम्सु कुव्विरत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये इतला दिया कि जिसने कयामत को अपनी इन आंखों से देखना हो वो इस सूरत को पढ़ ले। तो स्टार्ट ही इस सूरत का कयामत के हौलनाक मनाजिर से है, कयामत के दिन क्या होने वाला है। तो जब सूरज को कुव्वीरत का मतलब है लपेट दिया जाना, जैसे पगड़ी है उसको लपेट दिया जाए, या बड़ी चादर है उसको जमा करके लपेट दिया जाता है, गोल घुमा के सर पे अमामा या पगड़ी पहनते हैं, तो वो लपेटी जाती है। और जब वो लपेटती है तब सर भी गायब हो जाता है, नजर नहीं आता, और इसका अंदर का हिस्सा भी नजर नहीं आता, जो पगड़ी है या जो कपड़ा है। यहां पे बताया गया जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, तो यानी मुफसरीन ने, बाज ने कहा सूरज की शुआएं जो हैं उनको लपेट दिया जाएगा, उसकी धूप लपेट दी जाएगी जो आ रही है। जिसका माना क्या है, इसका माना इब्ने अब्बास ने ये किया कि कुव्विरत का माना है अदलमत, यानी अंधेरा, कि सूरज अंधेर हो जाएगा, सूरज डार्क हो जाएगा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। ये समझना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि साइंस हमें बताती है कि सितारों की भी एक लाइफ है, और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, ब्लैक होल्स बन जाते हैं, सब चीज़ों को अपने अंदर सक इन कर लेते हैं। और एक दिलचस्प बात, जो कि मुझे एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी शौक है पढ़ने का, तो ये जो लफ्ज़ कुव्विरत है, अगर आप हमारी गैलेक्सी की, मिल्की वे की आप कोई तस्वीर देखें तो वो स्पाइरल है, ऐसे जैसे एक पगड़ी लिपटी होती है ना, इसी शक्ल में, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरज लपेट दिया जाएगा, और अगर ये गैलेक्सी लपेट दी जाए, ये गैलेक्सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे व इधन नुजूमन का दौरत, जब तारे भी गदले हो जाएंगे, मान पड़ जाएंगे, और गिरने का माना भी लिया गया है कि गिर के बेनूर होके झड़ जाएंगे। कदरत है ना, जैसे हम कहते हैं कदूरत, दिल में मैल आ जाना, किस मेरे दिल में किसी के लिए कदूरत है, यानी मैल आ गया। तो इन कदर भी इसी से है कि यानी मैले हो जाएंगे, गदले हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे, फेड अवे हो जाएंगे। और इससे पता चलता है कि ना सिर्फ कयामत इस जमीन पे आएगी, बल्कि कायनात में भी कयामत का एक मंजर होगा, जिसमें सूरज भी इन्वॉल्व्ड है और सितारे भी। हम जानते हैं कि सितारे सूरज से बहुत दूर हैं, जो हमें सितारे नजर आते हैं वो हमारे गैलेक्सी के अंदर और बहुत सारे स्टार्स हैं, और सूरज भी एक सितारा है। तो यानी दूर तक इसका इफेक्ट होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस, मिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, बिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक पहुंच जाता है इसका नंबर, इतने सितारे हैं। तो जब सितारे भी मान दो कि गिरने लगे, इसका मतलब कि उनके ऊपर भी कयामत के दिन का असर है। तो ये कयामत सिर्फ इस जमीन की कयामत नहीं है, हो सकता है पूरी कायनात की कयामत हो। तो जब इसको लपेट दिया जाएगा, यानी सूरज तो बुझ गया, आप सोचें कि लाइट ही थोड़ी देर के लिए चली जाए तो क्या हाल होता है, कितनी घबराहट होती है, और सूरज खत्म हो जाए, तो सूरज दिन का नूर है, दिन की लाइट है, और तारे रात की लाइट है। और यहाँ पे चांद की बात नहीं की गई। आज हमें सुभान अल्लाह ये पता चलता है कि चांद तो कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है इन सितारों के मुकाबले में। जो सितारे हमें छोटे नजर आते हैं असल में बहुत बड़े हैं, और चांद तो बहुत करीब है, बहुत छोटी सी चीज़ है, जबकि जो सितारे हैं वो स्टार्स हैं और बहुत दूर हैं, और वहां से टिमटिमा रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर तारों तक इफेक्ट जा रहा है और सूरज भी बहुत दूर है, चांद तो सबसे करीब है, तो फिर सोचें कि इस कायनात का क्या हाल होगा। कहां तक कयामत के दिन की हौलनाकी पहुंचेगी। ये दो चीजें बता के आसमान की कैफियत बता दी गई कि आसमान का क्या हाल होगा। इसके बाद जमीन की कैफियत बताई गई है, और जमीन की कैफियत में सबसे पहले पहाड़ों की बात की गई। और हम देखते हैं कुरान करीम में जहां पे कयामत की हौलनाकी की बात आती है वहां पे पहाड़ों का जिक्र जरूर आता है। और वजह क्या है? क्योंकि जमीन पे सबसे जो मजबूत चीज है वो पहाड़ है। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई और चीज इतनी मजबूत नहीं जितनी पहाड़। ये पहाड़ों के बारे में आज हमें पता चलता है कि पहाड़ जितने ऊपर हैं उतने जमीन के नीचे भी हैं, यानी गड़े हुए हैं, पेग्स की तरह हैं। जैसे खेमे को गाड़ दिया जाता है ना, तो ऊपर भी हैं नीचे भी, ऐसे ही ऊपर सतह पे नहीं पड़े हुए। वाकई मेख हैं, जो कहा गया कुरान करीम में कि मेखों की तरह गाड़ दिए गए हैं, तो वो वाकई ही मेखें पता चलती हैं। तो उस वक्त तो जमाने में लोगों को इसका नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था सितारे जो हैं वो चांद से भी ज्यादा बड़ी चीज हैं और बहुत दूर है। और सितारे बता के पता चल गया कि चांद का फिर क्या हाल होगा, चांद की तो बताने की जरूरत ही नहीं। और ये भी कि पहाड़ अगर ऐसी हालत में होंगे जो कि जमीन के नीचे गड़े हुए मेखों की तरह, कि वो चला दिए जाएंगे सुयरत में सैर करना, जैसे आप कहेंगे सैर, आप कभी भी उसमें कोई केओस नहीं होती, बड़े आराम से आप सैर कर रहे होते हैं। इससे सैयारा भी, कार को, गाड़ी को कहते हैं, तो गाड़ी भी कितनी स्विफ्टली चल रही होती, स्मूथली। तो जो पहाड़ हैं वो ऐसे होंगे जैसे तैर रहे हैं बादलों की शक्ल में, धुन की भी रुई की शक्ल में, या जैसे हमें पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे होगा कि गुबार बना के उड़ा दिए जाएंगे। तो उखाड़ा भी जाएगा इनको और इनको उड़ा भी दिया जाएगा। अब जमीन पे क्या रह गया? अगर पहाड़ों का ये हाल है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सूरज और सितारों का बता के आप अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हैं आज का इंसान कि बाकी कायनात का क्या हाल होगा। इसी तरह जब जमीन पे पहाड़ों का बता दिया गया, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मकान और बिल्डिंग और ये सब चीजें और गाड़ियां और ये सब और दरख्त वगैरह, इनका क्या हाल होगा। बड़ी चीज बता दी गई, अब आप छोटी को खुद ही सोच सकते हैं कि बड़ी की हालत अगर ये हो जाए तो छोटी का क्या हाल होगा। वइज़ल आयशारु उत्तिलत, और जब इशार आशरा से 10 महीने की हामिला ऊंटनी उत्तिलत छोड़ दी जाएगी, यानी उसके कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों? हम पिछली सूरत में पढ़ चुके हैं ना कि इंसान जो है ना वो हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो जब कयामत की हौलनाकी शुरू होगी उस वक्त से ही हर एक अपनी अपनी एक नफसा नफसी के आलम में होगा, और उस वक्त किसी को होश नहीं होगा अपनी किसी भी वैल्यूएबल चीज का। असल में यहां पे इन ऊंटनियों का जिक्र क्यों किया गया, किसी और चीज का क्यों नहीं किया गया? अरब के माशरे में सोचें, ये ऊंटनी जो होती थी वो एक उनकी बहुत ही कीमती मता होती थी, और वो भी वो ऊंटनी जो बच्चा देने वाली होती थी वो तो उनकी माल में इजाफा होने वाला है, तो उसका इतना ख्याल रखते थे, इतनी उसको संभाल के रखते थे, उसको उसकी निगहदाश्त करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब इसकी बच्चा होगा तो हमारी कमाई बढ़ जाएगी, हमारा माल बढ़ने वाला है। लिहाजा वो उसकी बहुत केयर करते थे, दिन रात उसकी केयर करते थे। जो लोग जानवरों को रखते हैं उनको पता है कि वो जानवर, गाय हो या ऊंटनी हो या ये, जब उनके बच्चा होने वाला होता है तो फिर मालिक उनकी कैसे केयर करता है, किसी टाइम पे भी उनसे गाफिल नहीं होता। जो इतनी वैल्यूएबल चीज जिसको हर वक्त वो नजर में रखते थे, उसका ये हाल हो गया कि उसको छोड़ दिया गया, तो फिर बाकी चीजों का क्या हाल होगा? और आप इसमें ये भी देख लें कि हम इसे पहले सूरह हज में पढ़ चुके हैं, ये कयामत का जलजला कितनी अजीम चीज है। या अय्युहन्ना सत्तकू रब्बकुम इन्ना जलजला तसाती शयुन अजीम, ए लोगो अपने रब से डरो क्योंकि कयामत का जलजला बहुत भारी चीज। और बताया गया उस दिन, जिस दिन तुम देखोगे उस दिन दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, और लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जैसे नशे की हालत में, हालांकि वो नशे में नहीं है। वह मा हम भी सुकरा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही इतना शदीद है। तो जिस वक्त ये पहला नफ़खा फूंका जाएगा वो बहुत ही हौलनाक वक्त होगा, किसी को किसी का होश नहीं रहेगा। आप दुनिया में ही देख लें, अल्लाह ताला रहम करे किसी कोई बीमारी हो जाए, उसको कोई होश नहीं रहता फिर कि कोई कौन कहाँ है क्या है, वो अपने ही उसके अंदर इतना होता है, उसको नहीं है कि अब मेरा काम कारोबार का क्या हो रहा है, मेरी जॉब का क्या हो रहा है। ये तो एक छोटी छोटी दुनिया के मसाइल। तो कहाँ कयामत का जलजला जब आएगा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो माँ जो अपने दूध पीते बच्चे को कभी अपनी नजर से ओझल नहीं कर सकती, सारा वक्त उसके ध्यान में, अगर बच्चा सोया भी होता है ना तो उसके ध्यान में बच्चा होता है, ये उठ तो नहीं गया, उसको छोड़ के नहीं कहीं चली जाती और बार बार आके चेक करती है, सोए हुए बच्चे को भी उसकी ऐसी निगहदाश्त करती, एक पल भी उससे गाफिल नहीं होती। कहाँ वो, उसको ये ही नहीं याद रहेगा कि मेरा कोई बच्चा भी है। वो दिन है जो बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला है। तो ऐसी वैल्यूबल चीज जो ऊंटनी है, इसको भी लोग छोड़ देंगे, यानी उनको अपने कीमती तरीन माल का भी ख्याल नहीं रहेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि बाकी माल असबाब का क्या हाल होगा अगर कीमती तरीन माल का ये हाल है। वह इधर हशीरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, यानी वहशी जानवर वैसे इंसानों से दूर रहते हैं, जो बीस्ट दरिंदे ये इंसानों से दूर रहते हैं, अपनी जंगलों में रहते हैं या कुछ है, लेकिन जिस वक्त कयामत का जलजला शुरू होगा तो उस वक्त ऐसा हाल होगा कि वो जानवर भी इंसानों की तरफ दौड़ेंगे। इससे आप अंदाजा करें कि दुनिया में कोई फ्लड वगैरह भी आ जाए तो देखने में ये मनाजिर आते हैं कि पानी है और एक तख्ते पे आदमी भी खड़ा हुआ और साथ सांप भी है पड़े हुए, या ऐसी भी मनाजिर देखे गए कि एक टीले पे शेर भी है और बकरी भी है, क्योंकि उस वक्त ऐसी हालत होती है कि अपनी अपनी पड़ जाती है। दुनिया के छोटे छोटे जो ऐसे हादसात हैं उनमें ऐसा होता है। कयामत के जलजले में तो वैसी जानवर भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे, वो भी इंसानों की बस्तियों की तरफ दौड़ेंगे, और कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब जानवरों को खड़ा किया जाएगा तो इसके अंदर ये भी है कि कयामत के दिन जब हशर का मैदान होगा उसमें भी हर एक को जमा कर दिया जाएगा, हत्ता के मक्खी को भी जिंदा किया जाएगा क़िसास लेने के लिए। वह ईदल बिहार सुज्जीरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, सज्जरा किसी चीज को खलत मलत कर देना, पानी और आग एक ही हो जाएंगे, और पानी बल्कि फ्यूल बन जाएगा आग को भड़काने के लिए। ये कैसे होगा? बहुत सारी आपने इसकी तफसीरों में देखेंगे कि किस तरह से होगा, शायद ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी, लेकिन हम नहीं जानते हैं। हाँ, हमने कभी देखा तो जरूर है, समुद्रों में आग लगती है, अभी देखी है आपने? आज भी ऑयल के जो रिजर्वॉयर्स होते हैं पानी में, कभी उनके ऊपर आग भड़क उठती है, तो लगी भी तो देखी है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि सारे समुंदर बेहार है, सब समुंदर भड़क उठ लेंगे, कोई समुंदर नहीं रह जाएगा जो पानी के साथ हो। आप अंदाजा कीजिए कि समुद्रों को भड़का दिया जाए, यानी समुंदर नहीं है वहां पे आग है, तो वो क्या मंजर होगा कि पानी की जगह आग भड़क रही है। ये आज इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि किस तरह से ये मनाजिर होंगे और कितने हौलनाक ये मनाजिर होंगे कि आग ही आग, क्योंकि इस जमीन का आप देखें ज्यादा हिस्सा पानी है, कम हिस्सा है ना खुश्की, तो अगर ज्यादा हिस्से में आग लग जाए उसको बुझाना कहाँ से होगा? आग को तो बुझाया किससे जाता है? पानी से, और पानी ही आग बन गए तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। और बुझाने वाले कहाँ होंगे? कौन बुझाएगा? बस जगह पे है कि समंदरों के नीचे आग है, इसीलिए एक ज़ईफ़ हदीस है जिसमें यह है कि समुंदर का सफ़र सिर्फ हाजी करें या उम्रा करने वाले या जिहाद करने वाले, क्योंकि समंदर के नीचे आग है। तो यानी ऐसे लेजरली कोई ट्रिप ना करें। वाइजन नुफूस जुविजत, और जब जानें जोड़ दी जाएंगी, नुफूस ने सब जानें, अनफूस नहीं नुफूस, जोड़ने का मतलब क्या है? यानी एक बात जैसे हमने पिछले सूरत में पढ़ी कि इंसान अपनी कब्रों से निकलेंगे या इंसान कब्रों से बाहर आएंगे, तो उनके चेहरे किसी के उससे भी पहले बल्कि पढ़ा था, तो उनके जब जो बाहर आएंगे अपनी कब्रों से, तो जाहिर है इंसान की जान और उसका जिस्म, यानी उसकी रूह और उसका जिस्म आपस में मिलेंगे तो तब वो खड़ा होगा। तो यहाँ पे एक माना ये है कि नुफूस जुविजत, यानी इंसान के जिस्म के अंदर उसकी रूह डाल दी जाएगी, उसके साथ उसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरा माना ये है कि इंसान को उसके अमल के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी जिसका जैसा अमल होगा उसके साथ वो हो जाएगा। और तीसरा माना ये कि इंसान जो तीन ग्रोहों में हो जाएंगे, जैसे सूरह वाकया में है, वकुंतुम अज़्वाजन सलासा, तो हर एक को अपने जैसे के साथ जोड़ दिया जाए, कोई असाबल यमीन में होगा, कोई असाबल शिमाल में होगा, कोई साबे खून में होगा, मुजरिमों के अलग ग्रोह होंगे, फिर इबादत गुजारों के अलग ग्रोह होंगे, नाफरमानों के अलग ग्रोह होंगे, यानी हर एक अपने अपने अमल के मुताबिक अपने ग्रोह में चला जाएगा। तो इस तरह से ग्रोह बंदियां हो जाएंगी, ये भी इसका माना किया जाता है कि हर एक अपने अपने मजहब के मुताबिक अपने ग्रोह में, यानी यहूदी यहूदियों के साथ, ईसाई ईसाइयों के साथ, मुसलमान मुसलमानों के साथ अपनी अपनी जमातों में चले जाएंगे। तो इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो उसके साथ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि कयामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके साथ होगा। देखना चाहिए हमें कि हमारी मोहब्बतें किसके साथ हैं, क्या कयामत के दिन भी हम इनके साथ होना चाहेंगे?
उस दिन तो अगर कोई चाहे या ना चाहे, उस दिन अगर आप चाहेंगे कि हम सहाबा के साथ हों और आज उनसे मोहब्बत नहीं है तो उनके साथ नहीं हो सकते। आज किसी प्लेयर के साथ मोहब्बत है, किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मोहब्बत है, कोई और सेलिब्रिटी आपके हैं, किसी और को आप स्टार समझते हैं, तो उन्हीं के साथ होंगे। फिर उनका अंजाम जो होगा वही होगा। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो यहां तक आयत 7 तक ये वो अहवाल हैं जो के उस वक्त रूनुमा होने हैं जिस वक्त के अभी ये कयामत का सा शुरू हुआ है, पहला नफखा फूंका गया है। और इजन नुफूस उजुवी जत, ये तो फिर उसके बाद यानी आयत 6 तक कह सकते हैं आप कि पहला मरहला जो है वो खत्म हुआ है और उसके बाद ये दूसरा मरहला शुरू हो गया आयत 7 से, जो दूसरे नुफ्खे में नुफ्खे में दूसरी दफा जब फूंका जाएगा तो उस वक्त की बात है, यानी उस वक्त फिर जाने जोड़ दी जाएंगी। अब ये हशर का अहवाल है, तो अगर आप इसको दो स्टेप्स में देखें तो पहला हाल वो है जो जमीन पे रूनमा होना है, जिसको वो लोग देखेंगे जो उस वक्त जिंदा होंगे, और उस वक्त क्या हौलनाकी होगी, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, क्योंकि ये वो लोग होंगे देखने वाले जिनमें कोई ईमान बाकी नहीं रह गया होगा। लेकिन जो दूसरा मरहला है कि जब जानें जोड़ दी जाएंगी अपने जिस्मों के साथ, तो ये वो मरहला है जो हर कोई देखेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुमे का दिन होगा, लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, अचानक मशरक और मगरिब के तमाम लोग एक ऐसी आवाज सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। इस नामानूस आवाज की हौलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इस्तराब और बेचैनी फैलने शुरू हो जाएगी। ये सूर की आवाज है, ये सूर की आवाज बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहां होगा वहां गिर पड़ेगा, और जैसे जैसे ये आवाज बुलंद होती जाएगी वैसे वैसे कायनात का निजाम दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। यानी फिर सिर्फ इंसानों तक नहीं रहेगी, फिर पूरी कायनात में ये फैल जाएगी, जमीन आंधी में हचकोले खाने वाले कंदील की तरह हिलेगी और जलजलों की जद में आ जाएगी। पहाड़ गर्दोबार बन के उड़ने लगेंगे, समुद्रों में आग भड़क उठेगी, आसमान चिर जाएगा, सूरज चांद सितारे बेनूर हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम इंसान जिन हैवानात सब हत्ता के फरिश्ते भी फना हो जाएंगे, हत्ता के मलकुल मौत भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज फना हो जाएगी, सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात जुल जलाली वल इकराम बाकी रहेगी। कुल्लू मन अलैहा फान, सबको फना होना है। और उसके बाद फिर दूसरा जब नुफखा फूंका जाएगा तब तक ये जमीन फ्लैट कर दी जाएगी। देखें जब अब पहाड़ भी नहीं है, कुछ नहीं, ये जमीन फ्लैट होगी, और उसके बाद फिर नुफखा फूंका जाएगा तो इंसानों की जिस्मों के अंदर उनकी रूहें वापस दाखिल हो जाएंगी, और तब इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे। अगली सूरत में ही हम पढ़ेंगे वैजल कुबूर उबासिरत, कब्रें तलपट हो जाएंगी, कब्रों से लोग खड़े होने लगेंगे, तब नंगे पैर नंगे बदन बगैर खतने के होंगे मर्द, जैसे माँ के पेट से पैदा होते। वलकद जिएतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, तुम लोग अकेले अकेले हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया। सब उठेंगे लेकिन सबके हाल अलग अलग होंगे, कोई अंधा उठेगा, कोई बहरा उठेगा, कोई चूंटियों की शक्ल में उठेगा, कोई सर के बल उठेगा, और तब इंसान उस अनएक्सपेक्टेड लाइफ के मनाजिर देख के इतना खौफजदा होगा और इतनी दहशत में मुब्तला होगा कि आंखें पथरा जाएंगी, दिल कांप रहे होंगे, तब कलेजे मुंह को आएंगे, तब कोई किसी का गम गुसार नहीं होगा, तब कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, तब कोई किसी की तरफ देखने वाला नहीं होगा। जैसे हमने पिछली सूरत में पढ़ा था, लिकुल्ली इमरिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनुन युग्नी, कि उस दिन हर एक के पास अपना अपना ही एक शुगल होगा, एक अपनी ऐसी कैफियत होगी अपने ऊपर ही कि वो किसी का होश नहीं रखता होगा। और कब्रों से उठते ही फरिश्ते लेके चल पड़ेंगे मैदाने हशर की तरफ। अल्लाह अकबर, कोई पैरों तले रोंदे और कुछ ले जा रहे होंगे, कोई लोग सर के बल उठेंगे और जिल्लत के साथ हशर के मैदान की तरफ पहुंचेंगे, कोई पैदल पहुंच रहे होंगे, लेकिन सब खामोश होंगे, सब खामोश। दम मारने की किसी को जुर्रत नहीं होगी, एक ही समत सब रवां दवा होंगे, ऊंची सांस लेने की भी मजाल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को एहसास होगा आज इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है। और हशर में जब पहुंच जाएंगे, उस मैदान में पहुंच जाएंगे, तब ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। तब भी यही बात है, इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, कि मुजरिम अब अलग अलग हो जाओ, नेक अलग मुजरिम अलग, तब लोग ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, हर एक अपने अपने के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी नफ्स जुड़ जाएंगे, जानें जुड़ जाएंगी, यानी हर एक जैसे वो काम करता था उसके साथ, जिनसे वो मोहब्बत करता था जाहिर है उनकी तरह के ही काम किए थे। सब बातों का एक ही मतलब है, और जिन जो वो कहलाता था दुनिया के अंदर उन्हीं के साथ जाएगा ना। कोई सूरज की पूजा करता था वो उनके साथ चला गया, सितारा परस्त सितारों वालों के साथ चला गया, जो कब्रों की पूजा करते थे वो कब्रों वालों के साथ चले गए, जो मुनाफिक थे वो अपने अलग हो गए, जो मुर्तद थे उनका अलग और ग्रोह होगा। इस तरह इन ग्रोहों के अलावा भी जो जो जैसे अमल में थे ना, जैसे उलमा उलमा के साथ, सालेहीन सालेहीन के साथ, मुत्तकीन मुत्तकीन के साथ, सखी सखियों के साथ, फासिक फासिकों के साथ, फाजिर फाजिरों के साथ, बेनमाजी बेनमाजियों के साथ, वालदैन के नाफरमानों के साथ, कातिल कातिलों के साथ, डाकू डाकुओं के साथ, दुनिया में भी तो इसी तरह ग्रोह बना के रहते हैं ना, जिनके साथ दोस्तियां होती हैं, जिनके साथ मोहब्बतें होती हैं, जिनके साथ जो आप कहलाते हैं दुनिया में, कुछ तो कहलाते होंगे ना, जिनके साथ आपकी मुशाबहत है, जिन जैसे आप लगते हैं, जिनकी तरह के आपके काम होते हैं, उन्हीं के साथ होंगे ना। काफरों से मुशाबहत रखने वाले काफरों के साथ, तो हर एक की मैदाने माशर में खड़े होने की जगह अलग अलग होगी उसके मुताबिक। तब जमीन दहक रही होगी और सूरज की आग जिस्मों को जला रही होगी, क्योंकि सूरज बहुत करीब होगा, 1 मील के फासले से आग बरसा रहा होगा, जमीन पे पैर रखने मुश्किल होंगे, दूर दराज तक कोई टीला नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई साया नजर नहीं आ रहा होगा। और लोग अपने अपने अकीदे, अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीनों में शराबोर हो रहे होंगे, किसी को टखनों तक, किसी को पिंडलियों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को कमर तक, किसी को सीने तक पसीना आया होगा, कोई गर्दन तक पसीने में डूबा होगा, किसी के मुंह में भी पसीने की ऐसे होगा कि लगाम आई भी है, और पास पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। भूख और प्यास इतनी शदीद होगी कि लोगों का बुरा हाल हो रहा होगा, भूख प्यास और फिर गर्मी, इसी हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे, 50,000 साल तक इंतजार में कि आए अब हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। लोग कहेंगे चाहे हम जहन्नुम में ही चले जाएं, हमें यहां से तो निकले, क्योंकि देखिए आज सूरज हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पे है, इसके बावजूद आप गर्मियों में देखें आप पैर जमीन पे 1 मिनट के लिए नहीं रख सकते, नंगे पैर आप बाहर नहीं जा सकते। उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन जमीन का टेम्परेचर कितना होगा, जब 9 करोड़ दर्जे ज्यादा होगा, जब इतने फासले से इतना ज्यादा है, तो सोचे जब 1 मील पे होगा तो क्या होगा, तब लोगों की हालत क्या होगी, किसको किसका होश रहेगा, कौन किसको पूछेगा फिर। अल्लाह हो अकबर। तब जब अल्लाह ताला की अदालत लगने लगेगी, तो फरिश्ते जमीन के किनारों के पे सफ बस्ता खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह ताला का अर्श थाम के 8 फरिश्ते उतरेंगे, तब अदालत इलाही कायम होगी। और तब इज़ सुहुफ़ नुशी रहता है, जो आगे आए आगे आएगा, ये सहीफे नशर किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल मजलूम से किया जाएगा, वो मजलूम जिसकी दुनिया में कोई सुनवाई नहीं थी, कोई अदालत नहीं थी जो उसके लिए कायम हुई, कोई जालिम के खिलाफ फैसला देने वाला नहीं था, कोई इसकी आह सुनने वाला नहीं था, बेबस सबसे कमजोर कि किसी को बता के भी नहीं अपना दुखड़ा बयान कर सकती, वो बच्ची है जो जिंदा गाड़ दी गई, उससे सवाल किया जाएगा। क्यों, वो तो विक्टिम है, उससे क्यों सवाल होगा, मुजरिम से होना चाहिए ना। मुजरिम से अल्लाह ताला इस कदर नाराज होगा कि उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो इससे पूछा जाएगा, वह ईदल मऊदा तो सुलत भी अय दम्बिन कुतिलत, किस जुर्म पे तुझे मारा गया। और जंब सबसे छोटे कसूर को कहते हैं, कि इससे छोटा कोई कसूर नहीं हो सकता, यानी कौन सा ऐसा तेरे से कसूर हो गया था, ऐसा यानी कोई बड़े कसूर के ऊपर तो चलो किसी को हो सकता है किसी ने मार दिया हो, कि किसने कोई कत्ल किया तो उसको मार दिया गया, या किसी ने कोई और जुर्म किया तो उसको मार दिया गया, लेकिन छोटा सा कोई कसूर तेरे से ऐसा हुआ जिसके ऊपर तुझे इतनी बड़ी सजा दे दी गई, ये मतलब है, ऐसा कौन सा छोटा सा भी कसूर तेरे से हो गया था जिसकी ये सजा मिली। अब अल्लाह ताला उसकी तरफ देख नहीं रहा, मुजरिम की तरफ, उससे कलाम भी नहीं फरमा रहा, क्यों, इसलिए उसने इतना घिनौना जुर्म किया। और अरबों में तो ये चीज बहुत कॉमन थी, याद रखिए इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है वो पहले कभी नहीं थी। इवन आप पिछली सेंचुरी के शुरू के हालात को पढ़ के देखें, कोई औरत अपना नाम भी कैरी नहीं कर सकती थी, औरत के साथ जो डिस्क्रिमिनेटली सलूक होता था वो आप जरा कभी पढ़ के तो देखें, आपको पता चलेगा इसी वेस्टर्न सोसाइटी में, तब आपको असलियत पता चलेगी। तो कुराने करीम में इस फेल की कबाहत पे कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की गई, बल्कि सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि कयामत के दिन जब इसको पूछा जाएगा, तेरा से क्या कसूर ऐसा हो गया था नन्ही सी जान से, कि जिसके जिस पे तुझे इस तरह जिंदा ही दफन कर दिया गया। अल्लाह अकबर। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा तरगीब दी बेटी की परवरिश के ऊपर, क्योंकि लोग इस चीज को समझते थे कि बेटी को पाल पोस के हमने क्या करना है, इसके ऊपर खामखा खर्च करेंगे, अकल को तो इसने किसी और के घर चली जाना, किसी और का घर संवारेगी, हमने क्या करना है, तो हमारा तो वेस्ट ही हुआ ना इसके ऊपर। तो बेटों को तो वो बहुत पूछते थे, लेकिन बेटियों को कहते थे इससे बेहतर इसको खत्म ही कर दो, क्यों खर्चा करें इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि कल को कोई हमारा दामाद बन के आएगा, फिर हमें उसके नीचे होना पड़ेगा। तीसरी बात ये, कोई कबीला अगर हमला कर देता तो फिर हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, वरना इनको कोई लेके चला गया तो अपनी लौंडियां बना लेगा, इसे बेहतर है इनको मार ही दो। आज भी इस 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं, जब उनको पता चलता है अल्ट्रासाउंड से कि बेटी है तो खत्म करा देते हैं। अगर आज के दौर में भी ये हाल है तो फिर सोचो उस जमाने में क्या होगा। आप कहते हैं कि पैदा भी करने की जरूरत है, इसको तो अंदर ही मार दो, ये भी कत्ल है, ये भी जिंदा ही दफन कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन बेटियों की पैदाइश से आजमाइश में डाला गया और फिर वो इनसे नेक सलूक करे तो उसके लिए वो जहन्नुम की आग से बचाव का जरिया बनेगी। और ये फरमाया, जिसने दो लड़कियों की परवरिश की यहां तक कि वो बालिग हो गई, तो कयामत के रोज मेरे साथ वो इस तरह आएगा। ये फरमा के आपसे सलम ने अपनी उंगलियों को जोड़ के बताया और फरमाया, जिसने तीन बेटियों या बहनों की परवरिश की उनको अच्छा अदब सिखाया। बहनों का भी इस वाली हदीस में, क्योंकि अगर किसी भाई के ऊपर बहन का बोझ आ गया तो वो उससे अच्छा मामला करे, उनसे शफकत का बर्ताव करे, यहां तक कि उसकी मदद की मोहताज ना रहे, यानी उनकी शादियां हो गई या इंडिपेंडेंट हो गई, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, और दो के बारे में क्या? फरमाया, दो के बारे में भी यही। रावी फरमाते हैं, इब्ने अब्बास के रावी हैं, फरमाते हैं अगर लोग इस वक्त एक के मुतल्लिक पूछते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुतल्लिक भी यही फरमाते। और अबू दाऊद की रिवायत है, जिसके यहाँ बेटी और वो उसे दफन ना करे, ना जलील करे, ना बेटे को उस पे तरजीह दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आज ये हाल है, अगर बेटियों को जिंदा दफन नहीं करते लेकिन सारी जिंदगी बेटों को उनके ऊपर तरजीह देते हैं, खाने में बेटे को ज्यादा देना, बेटे को अच्छी चीज दे देना, छोटी छोटी चीजों के अंदर भी, कि बेटा है तो उसको नए कपड़े बना के देना, बेटी का क्या, ये तो पहले भी पुराने भी पहन लेगी तो क्या, बेटा है तो उसको ज्यादा प्यार देना, ये बेटा है ना हमारा, कल को हमारा बाजू बनेगा, इसको हमने क्या करना है प्यार करके, बेटा है तो इसको जायदाद में हिस्सा देना, इसको विरासत में हिस्सा देना, बेटी को देके क्या करना है, इसने तो लेके कहीं और चले जाना। यानी हर चीज में आप देखें कि कहाँ कहाँ तरजीह दे दी जाती है बेटे को बेटी के ऊपर, खाने पीने से लेकर के, अगर छोटी सी चीज है ना, सालन भी है तो अच्छा उसको दे दिया और ये तो कुछ भी खा लेगी, ये नहीं करना। इतनी हद तक बताए, सिर्फ ये नहीं कहा गया कि बेटी को जिंदा ना दफन करो, इतनी हद तक आ गया बेटे को तरजीह भी नहीं देनी, इक्वल इनके साथ मामला इक्वल रखना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जिसके यहाँ तीन बेटियां और वो इन पे सबर करे और अपनी वुसत के मुताबिक इनको अच्छे कपड़े पहनाए, वो उसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का जरिया बनेंगे, जन्नत में पहुंचाने का जरिया है। बेटा नेमत है, नेमतों का सवाल है, बेटी रहमत है, रहमत का सवाल नहीं है। लोग पूछते हैं हम क्या करें, हमारे बेटे हमारे लिए भी तो होना चाहिए, नहीं, जो बेटी वाले के ऊपर जिम्मेदारी होती है और जिस तरह उसको बेटी को संभाल के रखना पड़ता है, बेटे को बड़े हो जाएं आप सो सकते हैं आराम से, चैन की नींद सो सकते हैं, बेटा चाहे बाहर भी घूम रहा है, लेकिन बेटी के लिए नहीं आप कर सकते, उसको सारी जिंदगी संभाल संभाल के रखना पड़ता है, हत्ता उसकी शादी करते हैं फिर कहीं उसकी जिम्मेदारी से फारिग होते हैं, फिर भी पूरी तरह नहीं, हमारे माशरों में तो फिर भी कहते हैं पीछे भी देते रहो, सप्लाई जारी रहनी चाहिए, तो बहुत जिम्मेदारी है, वो बेटों की नहीं है उस तरह से। बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए वालदैन की रातों की नींदें हराम होती हैं, बेटे के लिए ऐसा नहीं होता, तो इसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, इसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, नगीनों की तरह किसी की मैली आंख ना पड़े। तो लिहाजा बेटी के लिए ये सारी बशारतें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे बड़ा सदका ना बताऊं कि वो क्या है, तो सहाबी ने फरमाया जरूर बताइए या रसूलल्लाह। फरमाया, तेरी वो बेटी जो यानी तलाक लेके या बेवा होके तेरी तरफ वापस आ जाए और तेरे सिवा कोई उसके लिए कमाने वाला ना हो, उसके ऊपर स्पेंड करना बेहतरीन सदका है, इसको सदका करार दिया। यानी फिर भी ऐसा ना करो कि अच्छा इसको तो ब्याया था ये तो वापस आ गई, अब उसके साथ बुरा सलूक करने लगे, उसके को बातें सुनाने लगे, जैसे बहुत सारी बेटियां बहनें जब अपने भाइयों के घरों पे पड़ जाती हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? माँ बाप के घर पे चली जाती हैं तो उनको उस ज्यादा नौकरानी से ज्यादा नहीं उनको समझा जाता? तो उस वक्त भी अगर, यानी वहां तक उसकी हिफाजत की गई, उस वक्त भी अगर तुम स्पेंड करोगे उसके ऊपर, खर्च करोगे, तो बेहतरीन सदका करार दिया गया। तो इसको सदका समझ के करो उनको, यानी बोझ ना समझो, ये भी तुम समझो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो। तुम्हें तो घर बैठे नेकी का मौका मिल गया, तो आज क्या हो रहा है हाल? क्योंकि हमने अपने दीन को ही छोड़ दिया। वो औरत भी तंग ना पड़े कि मेरी नंद आ गई, या एक औरत कहे कि मेरी बेटियां वापस आ गई, अब हम क्या करें इसका? तो अल्लाह ताला ने इस बच्ची की कहां तक फेवर में बात फरमाई कि हत्ता की शादी करके भी वापस पलट आए तो तब भी बोझ नहीं है। किसी एज में भी उसको बोझ ना समझो कि बोझ समझ के जिंदा दफन कर दिया, या बोझ समझ के सारी जिंदगी पाला कि क्या मुसीबत पड़ गई हमारे ऊपर, बेटी फिर पैदा हो गई, जब पैदा हो गई अब आप जिंदा तो नहीं दफन कर सकते, क्या करें, ये तो जुर्म है। लेकिन वैसे ही इतना रोना पीटना मच गया कि जैसे सो गया। लोग मुबारक नहीं देते, अक्सर आपने देखा होगा बेटों की मुबारकबाद दी जाती है, बेटियों की क्या होता है, अच्छा चलो अगली दफा सही, क्यों, यानी इस दफा नहीं हुआ बेटा तो अगली दफा सही। अल्लाह ताला ने उस दिन सवाल करना है, हर मजलूम के बारे में सवाल होगा। और आज कितने जुल्म हो रहे हैं, ना सिर्फ बच्चियों के साथ, औरतों के साथ भी हो रहे हैं, घरों के अंदर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ, जहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं। और जो जुल्म करने वाला है वो ये समझता है कि इसके पीछे कौन है, इसको कौन पूछने वाला है, इसको कौन देखने वाला है, कोई बात कह के तो देखे, लिहाजा वो फ्री हैंड समझता है। लेकिन एक अदालत है जो बहुत बड़ी है, जिस दिन वहां पे पेशी होगी ना, तब पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। वो जो कमजोर है उसके पीछे उसका रब है। तो आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हाय हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हाय हमारा कुछ सुनने वाले, पता नहीं अल्लाह भी नहीं हमारी सुनता। नहीं, अल्लाह ताला सुनता भी है, देखता भी है, वो बाखबर। जालिम बाज आ जाए, वरना उस दिन बचाने वाला कोई ना होगा। वाइदा सुहुफ नुशिरत, और जब सहीफे फैला दिए जाएंगे, नशर होंगे। क्या होता है दुनिया में, क्या नशर होता है? खबरें कहते हैं ना, नशर हो रही है, यानी खबर फैल जाती है, खबर नशर होती है, यानी खबरें सुनाई जाती हैं, यहां पे ये हो गया वो हो गया। जब इंसानों की बुक्स, उसके आमाल नामा नशर किया जाएगा, खोल दिया जाएगा दुनिया के सामने, तब इंसान का हाल क्या होगा? देखिए, इंसान ना इस चीज को तो बर्दाश्त कर लेता है, मसलन कोई मुजरिम है तो उसको अदालत सजा दे देती है तो तब तो उसे फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर सारी दुनिया के सामने वो फिल्म भी चलाई जाए जिसमें कि वो जुर्म कर रहा था, तो कितनी उसको जिल्लत उठानी पड़ती है और कितनी उसको शर्म आती है। एक तो उसका गुनाह है ना, ठीक है किसी को पता नहीं चला, लेकिन बस गुनाह हो गया, अच्छा चलो इसकी सजा भी मिल गई। लेकिन एक है कि वो फिल्म सबके सामने लाई गई, तो उसके ऊपर कितनी जिल्लत का सामना होता है। अब आप देखें दुनिया में हमारे आमालनामे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो नशर हो, आज देखने की जरूरत है। मैं आज के इन आयात में सवालात एंड में नहीं करूंगी, मैं आपके ये आयतों के साथ साथ कर रही हूं, जिनको कि आप लिखें मेरे आमालनामे में वो कौन सी चीजें हैं जिनको मैं नहीं चाहती कि ये नशर हो, क्या क्या है जो मैं नहीं चाहती किसी के सामने भी खुले। देखें, इंसान की ना एक लाइफ होती है जो उसकी पब्लिक लाइफ है, जो लोगों के सामने है, जिसमें वो बड़ा अच्छा अच्छा बना होता है, सबके सामने बड़ा नेक, बड़ा लायक, बड़ा जैसे भी। और एक होती है उसकी ऐसी जिंदगी जो किसी के सामने नहीं होती, जिसको प्राइवेट लाइफ कहते हैं, जिसको कहते हैं उसकी पर्सनल लाइफ कहते हैं, जो छुपी हुई होती है। वो जो छुपी हुई लाइफ है उसके अंदर क्या क्या कुछ है, जो तन्हाइयां हैं, जो रातें हैं, जो दिन हैं, जो घर की जिंदगी है जो शायद किसी के सामने भी नहीं खुली, उसमें क्या क्या है। और हौसला माफ़ सुदूर आगे आ रहा है ना, सीनों के अंदर की जो भेद है ना वो भी निकाल के बाहर रख दिए जाएंगे, वो दिखाने के काबिल हैं। क्या मैं चाहूंगी कि उस दिन मेरा आमालनामा नशर हो? और नशर हो, मुझे तो खुद पता है ना कि मेरे आमालनामे में क्या है। उस दिन कहा जाएगा इंसान से कि इकरा किताबक, तू पढ़ अपनी किताब। सूरह इसरा में आया ना, कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तू आज अपना हिसाब लेने के लिए तो खुद ही काफी है। आज तेरा हिसाब तू खुद, तुझे खुद पता है कि तू क्या करके आया। जो जो चीजें हम आज कहते हैं ना, किसी को भी ना पता चले, हमें पता है और अल्लाह ताला को पता है। हम आज उसको छुपा सकते हैं, आज उसको राज में रख सकते हैं, कल क्या होगा? वो राज खुल जाएंगे जब सहीफे नशर होंगे, जब आमालनामे दिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि वो वक्त ऐसा होगा किसी को किसी का होश नहीं होगा, कब जब बुक्स दी जा रही होंगी और जब कहा जाएगा इकरा किताब, पढ़ अपनी किताब, खुद अपनी किताब पढ़ खुद। ये मैंने झूठ बोले, ये मैंने इतने यहाँ पे ये किए, फिर मैंने ऐसी नमाजें पढ़ी। सोचें आज हमने अपनी किताब भी किसी को, अपने नोट्स भी किसी को दिखाने हो ना, तो हम उनको बड़े नीटली बनाते हैं। क्या कहेगा कोई कि ये कैसी इसने हैंड राइटिंग की, क्या कहेगा कोई कि ये ऐसे काम करते। अपना टेस्ट हो किसी को दिखाना हो, लोग कहते हैं हमारे नंबर किसी को भी ना पता चले। नंबर पता चलना तो दूर की बात, हर एक को ये बताया जाए, देखो ये देखो इसने ये गलती की, ये देखो इसने यहाँ पे ये किया हुआ, तब कितनी शर्म आए। हम इतनी सी भी अपनी बात जिसमें हमारी कोई भी सुबकी हो, बेइज्जती हो, जिसमें हमें कोई शर्म आनी हो, हम कितनी उन चीजों को छुपा के रखते हैं, कितना उन चीजों पे पर्दे डालते हैं, कितनी तावीलें देते हैं। कुछ किसी को पता भी चल जाए तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे, कितनी जस्टिफिकेशंस होती हैं हमारे पास। सोच लें कि जब नशर होंगे और हर एक को पता चलेगा तब क्या हाल होगा, कुछ छुपा नहीं रह सकेगा। तो सोचिए इन दो में से एक मेरा हाल होगा, यहां तो मैं कहूंगी हा उमुकराऊ किताबिया, देखो देखो लोगो देखो मेरी ये बुक, या मैं कहूंगी या लईतनी, या लईतनी माउती किताबिया, काश मेरी किताब मुझे ना दी जाती, काश मेरा आमालनामा मेरे हाथ में ना होता। तो ये आमालनामों की जो तकसीम होगी ना, ये बहुत ही एक ऐसा वक्त होगा तो बहुत ही परेशानी का होगा, क्योंकि इंसान की सारी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। जो भूला बिसरा माजी है उसकी भी सारी यादें ताजा हो जाएंगी, सारा हाफजा सही हो जाएगा, सारी नजर तेज हो जाएगी। वही वक्त है कि जब इंसान, या तो उसका चेहरा ऐसा होगा कि तरोताजा और खुश हो जाएगा, और या फिर उसका चेहरा होगा कि वो उसके ऊपर गुबार होगा जो हमने पिछली सूरत में पढ़ लिया, यहाँ स्याही छा जाएगी, जिल्लत छा जाएगी, हसरत होगी, निदामत होगी। या लईता नीलम मूत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मुझे पता ही ना चलता कि मेरा हिसाब क्या है। इंसान हैरान होके कहेगा ये कैसा मालनामा है, माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असा, अरे मेरी कमबख्ती ही कैसा हमालनामा है, कोई काम इसमें तो रह ही नहीं गया जो छोड़ा गया, छोटा बड़ा हर अमल लिखा हुआ है। एक आंख की जुम्बिश भी लिखी, एक तंजिया मुस्कुराहट भी लिखी, एक एक झूठ मेरा लिखा हुआ, एक एक गीबत मेरी लिखी, एक एक दिन जब मैं बेपर्दों के घर से निकली वो लिखा हुआ, एक 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 बात जो मैंने अपने मुंह से निकाली वो लिखी हुई है। मेरी बदसलूकियां, मेरा हुस्ने सलूक, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरा हर चीज इसके अंदर है, छोटी से छोटी चीज भी है। कितनी छोटी, मिसकाला जर्रा थे, जर्रे के बराबर चीज भी उस दिन खैर की भी देख लोगे, शर की भी देख लो। और जर्रा कितना होता है, इसकी जो तफसीर की गई वो ये कि जूं का अंडा, जिसका कोई वेट नहीं है, जो नेकेड आई से नजर भी नहीं आता, बड़े चश्मे लगाने पड़ते हैं लोगों को देखने के लिए, इतनी सी चीज भी ना, वो आंख का उठना भी, वो दिल में जो बातें थी वो भी, जो एक मुस्कुराहट थी वो भी, हर हर बात लिखी हुई है। तो हम रेडी हो जाए इनका जवाब देने के लिए। वैसा उकुशीत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। अब मैंने आपको जैसे बताया आयत 6 तक तो दुनिया के मनाजिर थे, अब यहां पे आसमान कैसे आ गया, ये तो हशर का मैदान सजा हुआ है। हाँ, जब फैसले हो जाएंगे तो उसके बाद आसमान की खाल खींच दी जाएगी, क्योंकि आगे ही जो बात आ रही, जैसे खाल उधेड़ दी जाती है ना जानवर के ऊपर से, तो सब नीचे से नजर आने लगता है। पहले क्या है, आसमान शक हो रहा था, ओ फुतिहत समा फकानत अबवाबा, तो आसमान दरवाजे दरवाजे हो गया था, या शक हुआ तो चिर गया, या आगे फतरत है तो लंबाई में कट गया, फट गया, वो था। लेकिन अब तो उतार दिया जाएगा पूरा, यानी अब ऊपर कोई हर हाल नजर आ रहा है, क्योंकि आगे क्या बात है। वह इजल जहीम सुरत, और जब जहन्नुम भड़का दी जाएगी। जहन्नुम को, यानी इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहन्नुम इस वक्त नहीं भड़की हुई, इस वक्त भी वो भड़क रही है, लेकिन उस वक्त और ज्यादा भड़काई जाएगी। वो तो अरसे दराज से भड़क रही है, पहले वो सुर्ख थी, फिर सफेद हुई, फिर उसके बाद 1000 साल जलती रही तो सियाह हो गई, और इस वक्त उसकी आग काली सियाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे भी देखा था, जहन्नुम के मनाजिर देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते को भी देखा जिसको मुस्कुराना भूल गया है, इसलिए कि वो जहन्नुम का दारोगा है, इसलिए कि जहन्नुम के ऊपर वो उसको ड्यूटी दी गई है, तो उसकी हालत क्या हो गई है कि वो मुस्कुराता भी नहीं है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। ऐसा शदीद मंजर देख के, तो ये वो आग है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है, कि हत्ता के जहन्नुम के एक हिस्से ने शिकायत की अल्लाह ताला से अपने दूसरे हिस्से की, कि या अल्लाह मेरा दूसरा हिस्सा मुझे खा रहा है, इस कदर शदीद है ये, मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खा रहा है। और कितनी गहरी है कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया हमने एक धमाका सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हुए क्या था, हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया एक पत्थर है जहन्नुम में फेंका गया था 70 साल पहले, वो अब जाके जहन्नुम के जो बेस है उस पर पहुंचा है। और ये दुनिया की आग ही इंसान को जलाने के लिए काफी है, जब 70 गुना ज्यादा आग है तो वो कैसी होगी। और फिर इंसान की हालत क्या होगी कि जो उसके अंदर सख्त भूख में होगा, और फिर इसका अजाब होगा, और सख्त प्यास में होगा, तब इंसान कहेगा ए मालिक, यानी जो दारोगा है जहन्नुम में उसको पुकारेगा हमारे रब से, क्या हमें मौत ही दे दे, हमें मौत ही दे दे, हजारों साल पुकारते रहेंगे जहन्नमी, तब जाके वो जवाब देगा, नहीं तुम यहीं पड़े रहो। कहेंगे अल्लाह हमें यहां से निकाल, हम अगर ऐसा फिर करें तो हम जालिम होंगे। अल्लाह अकबर। तो उस दिन जहन्नुम भड़का दी जाएगी, यानी वो लोग देख रहे होंगे जहन्नुम का वो मंजर उनके सामने आ जाएगा, जहन्नुम को बाकायदा लाया जाएगा और फरिश्ते उसको थामे हुए होंगे और फरिश्ते उसको कंट्रोल करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, उसकी बागें होंगी, 70,000 चेन्स में उसको पकड़ा होगा, थामा होगा, हर चेन के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच के ला रहे होंगे, और वो आपे से बाहर हो रही होगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जन्नत करीब कर दी जाएगी। किन के करीब की जाएगी? मुत्तकीन के। ये वो हौसले से हो जाए कि देखो उस वक्त है ना, कि वो फिर चेहरे क्या हो जाएंगे, अरे जिनके करीब जन्नत कर दी जाएगी वो फिर कैसे होंगे? दाहिका तुम मुस्तबशिरा, हंस रहे होंगे। दाहिका वो है जो आवाज से इंसान हंसता है, खुशी मना रहे होंगे, रोशन होंगे, मुस्फिरा होंगे।